चलिए आगे देखते हैं। आयत 190 से, यहाँ से 190 से लेकर 195 तक इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इसमें कुछ बातों को रिलेट करके दोबारा देखेंगे। और यहाँ ये भी बता दूँ कि इन आयात से, यानी ये आखिरी रुकू है सूरत आले इमरान का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास अमल है। और इन आयात की शान नज़ूल बल्कि पहले ही देख लेते हैं ताकि सुनते वक्त रग़बत भी आए और लफ्ज़ों को खूबसूरत तरीक़ों से देखें। तो इस आयत के बारे में इब्ने हब्बान, एक किताब है हदीस की, उसके अंदर अता बिन नबी रबाह जो हैं वो एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मैं गया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम के हालात में जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ आपने देखी हो वो मुझे बताइए। यानी बीवी थी तो इंसान घर में ज़्यादा खुलता है, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी की कोई अजीब बात जो आपको लगी वो बताइए, कोई अजीबो गरीब बात। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आपकी किस शान को पूछते हो, इनकी तो हर शान ही अजीब थी। हाँ एक वाक़या अजीब सुनाती हूँ, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और लिहाफ़ में मेरे साथ दाखिल हुए, फिर फरमाया कि इजाज़त दो कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत करूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बीवी आयशा के पास हैं, यानी उनकी बारी थी उस रात को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से इजाज़त तलब कर रहे हैं कि क्या मैं रात को कुछ इबादत कर लूँ। क्या पता चलता है आप मुस्लिम हस्बैंड अपने घर में कैसा होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे थे। कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रखें, और कुछ तो ऐसे भी होंगे अल्लाह ताला माफ़ करे कि बीवियाँ सारी सारी रात इंतज़ार में बैठी हैं और वो बाहर दोस्तों में हैं या कारोबार में है। तो यहाँ एक छोटा सा साइड पॉइंट अमल के लिए लिख लीजिए कि अच्छे शोहर होने की अलामत ये है, जिस तरह अच्छी बीवी की ये अलामत है कि वो अगर कोई भी नफिल इबादत करने लगी है या वो करना चाहता है तो बीवी को पूछे या कम अज़ कम एतमाद में ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं इस मौके में, इस हदीस में तो नहीं आता लेकिन एक और जगह पे आता है कि हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी मुझसे पूछें तो मुझे तो आपका कुर्ब ही पसंद है, यानी मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप मुझे यहाँ छोड़ के आप इबादत के लिए जाएँ, लेकिन मुझे आपकी खुशी भी मतलूब है। इससे भी पता चलता है कि जब एक बंदा यानी शौहर और बीवी में से किसी एक का दिल इबादत के लिए करता है तो अल्लाह ताला दूसरे के दिल में खुद ब खुद कुर्बानी का जज्बा पैदा कर देता है। मत सोचा करें कि हमारे शौहर नहीं पसंद करते, कैसे तहज्जुद पढ़ें कैसे रोज़े रखें, प्यार से कह के देखिए। कोई बंदा ऐसा नहीं होता इल्ला माशाल्लाह कि वो आपको नेकी से रोके। बहरहाल कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम उठे, आपने अपनी नींद का खुमार दूर किया, यानी सोने के बाद इंसान की आंखों में एक बोझ होता है ना, ये दूर किया और बिस्तर से उठे। आप सोचिए ज़रा, यहाँ एक और साइड पॉइंट जो अमल का निकल रहा है नुक्ता, कि हम सोचते हैं ना जब नबी सल्लम का, हम कहते हैं माशाल्लाह जब होता था झट से उठ जाते थे, उनको तो नींद ही नहीं आती थी, वो तो भूख भी नहीं लगती थी, वो तो बस बस अल्लाह के बंदे थे। तो ऐसा नहीं था, वो बशर थे, हाँ नींद आती थी नींद छोड़ते थे। और आज हम में से कितने हैं जो अपनी नींद का खुमार तोड़ें ताकि नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ ही पढ़ने के लिए उठ जाएँ तो भी बड़ी बात है। तो नबी हो या कोई आम इंसान हो, कुर्बानी बहरहाल देनी पड़ती है। फरमाती हैं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लम बिस्तर से उठे, वुज़ू फरमाया, फिर नमाज के लिए खड़े हुए और क़याम में इस कदर रोए, यानी आपने तहज्जुद शुरू कर दी, इस कदर रोए कि आपके आंसू सीने मुबारक पर बह गए, फिर रुकू फरमाया और इसमें भी रोए, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर रोए, फिर सर उठाया और मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। क्या गम था अल्लाह के नबी को, कोई बच्ची का रिश्ता अटका हुआ था, कोई बेटे की जॉब नहीं थी, कोई घर का मामला था। हमारी भी रात, हम भी कभी कभी उठते हैं जब हमारा कोई मसला बिगड़ा हो, कभी इम्तिहान में अच्छे नंबरों की उम्मीद है तो रो लेंगे धो लेंगे। अल्लाह करे इसके लिए भी करें, ये भी एक अच्छी आदत ही है कि अगर बंदा दुख में अल्लाह को पुकारे। लेकिन अल्लाह के नबी को जो तकलीफ़ें थी वो क्या थी, उसका तस्कर आगे होगा। कहती हैं कि जब सुबह हो गई हज़रत बिलाल आए रज़ी अल्लाहु अन्हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तला दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी इस कदर क्यों गिरिया फरमाते हैं। कहती मैंने रोने की वजह पूछ ली, क्या आज आप इतना क्यों रोए, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। यानी हज़रत आयशा को इस बात का अंदाज़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़रत के लिए और गुनाहों की माफ़ी के लिए तड़प रहे हैं, तो कहने लगी आप क्यों इतना गम करते हैं, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फिर क्या ज़रूरत है रातों को जागने की, तहज्जुदों की, रोने की, धोने की? तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा ना बन जाऊँ और मैं शुक्रिये में गिरिया जारी क्यों ना करूँ? जबकि अल्लाह ने आज की शब मुझ पर यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई, इन नफ़ी खल्क समावाति वल अर्ज़ से लेकर। फिर आपने फरमाया, तबाही है, बड़ी तबाही है उस शख्स के लिए जिसने इन आयतों को पढ़ा और इनमें गौर नहीं किया। अब ज़रा हम आयत को पढ़ने और शुरू करने से पहले अपने ऊपर भी गौर फरमा लें कि काफ़ी लोगों को ये आयात याद भी होती हैं और ये आयात नबी सल्लम के अमल से हमें साबित हो जाता है कि तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो पढ़ते थे। अमल क्या था, मामूल बता देती हूँ आपको कि अल्लाह के नबी सल्लम अपने बिस्तर से जब उठते सीधे बैठते, और ये भी एक सुन्नत है कि लेटने के बाद फ़ौरन उठ के खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। आज डॉक्टर्स भी इसको बताएंगे आपको कि आपका खून एकदम, आप सीधा खड़े होंगे तो सर को खून नहीं मिलेगा, और सुन्नत से वही चीज़ साबित है। पहले अपनी जगह बैठते, जिस्म ज़रा थोड़ा सा आदी हो जाता, फिर उसके बाद खड़े होते। और आप उठते ही सबसे पहले इन नफ़ी खल्क़ समावात से लेकर सूरत के आखिर तक इन आयात की तिलावत करते। एक सहाबी हैं हज़रत अब्बास रज़ी इब्न अब्बास जो है ना, इनकी खाला जो थी हज़रत मैमूना, वो नबी सल्लम की बीवी भी थी। तो हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक रात मैं अपनी खाला के घर चला गया तो मैंने अल्लाह के नबी का ये मामूल देखा कि आप उठे और आपने फिर वज़ू से पहले ही आयतें पढ़ी। इसी से फिर ये मसला भी मुफस्सरीन बयान करते हैं कि वज़ू के बग़ैर कुरान पढ़ा जा सकता है, क्योंकि और एक और बात इससे पता चलती है कि जो याद करेगा उसी को आएगा ना ये मसला याद। जिसको ये दुआएं याद होंगी वहाँ कुरान तो नहीं ठटोलेंगे ना उस वक़्त, ये आयतें याद होनी चाहिए। लेकिन पढ़ना भी बात है सो है, लेकिन इस पे गौर और फिक्र की बात है। तो चलिए खुलासे के तौर पे आयत को देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या फरमाते हैं। और वाकई ये उन आयात में से हैं कि जो बंदे को रब का तारुफ करवा देती हैं। फरमाया, इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अक्लमंद? हमारे पास तो क्या तारीफ़ें होंगी। अल्लाह ताला अगली आयत में अक्लमंदों की निशानियां बताते हैं। हम भी अगर अक्लमंदों में शामिल होना चाहते हैं या अक्लमंदों से वास्ता डालना चाहते हैं तो ये मेयार सामने रखेंगे। कौन होते हैं अक्लमंद? सबसे पहली बात, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं। ये है पहली सिम्टम्स अक्लमंदों की, इस पे वन लगा ले या ए लगा ले। अल्लाह का जिक्र खड़े बैठे और लेटे हुए, मुराद क्या के हर हाल में करते हैं। दूसरा इनका काम, ويتفكرون في خلق السماوات والارض, और वो आसमानों ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता भी से नोट कर लें कि ज़िक्र अल्लाह का है और गौर व फिक्र मखलूक के बारे में, क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर व फिक्र शुरू कर दिया ना तो बहक जाएंगे। किसने पैदा किया, कहाँ है, किस तरह से है, खड़ा है कि बैठा है कुर्सी के, इसलिए नापसंदीदा है कि अल्लाह के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाए। हुक्म क्या है कि अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। तफक्करु फ़ी आयातिल्लाही वला ततफक्करु फ़िल्लाह, अल्लाह की पैदा की हुई निशानियों में गौर व फिक्र करो मगर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में गौर व फिक्र ना करो, क्योंकि वो हमारी रसाई से बालातर है। आप देखिए कि सूरज की रोशनी में हर चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन कोई खुद सूरज को देखना चाहे तो आंखें खीरा हो जाती हैं ना। इसी तरह अल्लाह ताला की कायनात के ऊपर गौर करके हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सोचे ना कि अल्लाह कौन है, कैसा है, किस तरह का, तो ये चीज़ बाज़ दफ़ा फिर इंसान को कुफर तक ले जाती है, क्योंकि अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, अल्लाह तो रोशनी है। तो बहरहाल दूसरा काम अक्लमंदों का और उलुल अलबाब का क्या है कि वो अल्लाह की तख्लीक में गौर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा पिछले लफ्ज़ की वजाहत कर दूँ, साथ ही उलुल अलबाब का लफ्ज़ आया आपके सामने, तो उलू कहते हैं वाले को, उली उलू, और अलबाब क्या होगा, देखने से क्या लग रहा है, कोई बताएगा आप में से? जी आप बताइए। दरवाजे, मैं आपसे सच सुनना चाहती थी। बहुत सारे लोग इस उलुल बाब को बाब दरवाजे से लेते हैं, और जब बंदा कुराने पाक को दूर बैठ के थोड़ा कच्चा पक्का पढ़ता है या घर में ही थोड़ा पढ़ पढ़ा के देखता है ना, तो भटक जाता है। ये बाब नहीं है, बाब दरवाजे को कहते हैं, सच है, लेकिन यहाँ लाम साथ है, लुब। इसका रूट नोट कीजिएगा, लाम बाबा लुब। लुब कहते हैं मगज को, ब्रेन जो दिमाग होता है ना, उसके अंदर जो गूदा होता है ना, उसको लुब कहते हैं। और यहाँ एक खास अकल का इशारा है कि वो अकल जो बंदे को अल्लाह की तरफ ले जाए, अल्लाह ताला की तरफ उसकी तवज्जो आ जाए। मगज, खुलासा, यानी अकल वाली। अकल ही इंसान का असली जौहर है, तो उलुल अलबाब से मुराद है अकल वाले। फिर इसी तरह हमने यहाँ लफ्ज़ खल्क देखा, तो खल्क का लफ्ज़ जो है ना, ये मस्दर है। इसका मानी होता है ईजाद करना और इख्तरा करना, यानी घड़ने के मानों में। यहाँ मुराद है कि आसमान और ज़मीन के पैदा करने में। फिर अगला लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है वख्तिलाफ़। इख्तलाफ का लफ्ज़ खा लाम फा से है। खलफा से इख्तलाफ बाब इफ्तियाल में गया। मुराद क्या है? एक दूसरे की जिद होना। अरबी का एक मुहावरा है, इख्तलफू फलानुन फलानन, यानी वो शख्स फलां शख्स के बाद आया। तो इख्तलाफ और लैल नहार से क्या मुराद है कि रात आती है तो दिन चला जाता है, दिन आती है तो रात आती है। इसी तरह इख्तलाफ के दूसरे मानी कमी और ज्यादती के भी होते हैं, यानी सर्दियों में रातें तवील हैं तो दिन छोटे हैं, गर्मियों में इसके बरक्स हैं। इसी तरह कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ रातें लंबी हैं तो दिन छोटे हैं, तो इख्तलाफ से मुराद डिफरेंट थिंग्स हैं। अगली चीज़ इसमें जो है वो क्या है? ला आयात। आयात का लफ्ज़ जो है, ये आयतुन की जमा है। आयतुन का लफ्ज़ निशानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, मौजज़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में 3 दफ़ा या 3 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। नंबर एक, वो मौजज़ात जो अम्बिया कराम को दिए गए, वो आयात थी, निशानियाँ थी। इसी तरह कुरान मजीद की ये आयतें जो हम पढ़ते हैं, 6666 आयात हैं कुरान पाक में, वो भी आयात होती हैं। और तीसरा आयत का मानी होता है दलील और निशानी। यहाँ इस आयत में ये तीसरा ही माना मुराद है कि अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियाँ और कुदरत की इन चीज़ों पे गौर करते हैं। और यहाँ से उलुल अलबाब होने का एक क्राइटीरियन भी पता चल गया, क्योंकि आज अगर दुनिया में किसी से आप पूछें अक्लमंद कौन है, तो हर एक कहेगा मैं हूँ। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ शख्स को भी आप पूछें ना अक्लमंद कौन है, कहता हूँ मैं हूँ। और आप बच्चों से पूछिए अकल के बड़ी के भैंस, तो कहेंगे भैंस, फिर भी कहेंगे हम बहुत अकलमंद है। तो सारी दुनिया अकलमंद होने का दावा तो करती है, कोई बेवकूफ़ भी अपने आप को बेअकल नहीं कहता, लेकिन अल्लाह ताला ने यह अकलमंदों की अलामत बता दी कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं, और जिक्र के वो तीनों दर्जे याद रखें जो सूरत बकरा में हम पढ़ चुके, कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, में दूसरे पारे का बिल्कुल गालिबन दूसरा या तीसरा ही, दूसरा ही रुकू है उसमें। तो जिक्र दिल से भी होता है, जुबान से भी होता है, और अमल से भी होता है। अब इस जिक्र के बाद जो दूसरा काम वो करते हैं, वो क्या करते हैं? वो यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ध, वो तफक्कुर करते हैं आसमानों ज़मीन की तख्लीकात में। तफक्कुर का जो लफ्ज़ है, ये फा काफ रा से है, फिक्र। आज के इस लेसन से हम दो टर्म्स को सीखेंगे, जिक्र और फिक्र, इन दोनों का फ़र्क और ये क्या है। अभी तो हम सिर्फ खुलासा कर रहे हैं। तफक्कुर से मुराद क्या है? गौर करना, सोचो किस तरह से ये बना, ये क्या हुआ, इसकी हिकमत क्या है। और ये सोच विचार किस चीज़ के लिए होती है? हल्किस समावाती वाला अर्थ, गोया के साइंस पढ़ाने का बेहतरीन तरीका अल्लाह सुब्हान तआला इन आयात में हमें सिखा रहे हैं, कि जब इस कायनात में निकलो, पहाड़ों को देखो, फलों को देखो, फूलों को देखो, दरियाओं को देखो, किसी लेबॉर्ट्री में जाके केमिकल एनालिसिस कर लो, किसी हॉस्पिटल में जाके डाइसेक्शन करने लगो, तो गौर करो, व या तफक्करून, ये क्यों पैदा किया, ये कैसे हुआ, ये किस लिए पैदा किया। और इस गौर व फिक्र का नतीजा क्या निकलता है? कि उनकी ज़ुबान पे एक जुमला आता है, क्या? कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला। ये है तीसरा दर्जा उलुल अलबाब। अक्लमंद सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं, ख़ास वक्त पे नहीं, ख़ास तरीके से नहीं। और सब इबादात में कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिसके करने का हुक्म है ना, वो जिक्र है। ये नहीं कहा बहुत सारी नमाज़ें पढ़ो, कहीं कुरान पाक में नहीं मिलेगा। बहुत सारे रोजे रखो, लेकिन ये आपको बार बार मिलेगा कि उसकरो अल्लाह जिक्रन कसीरा, जिक्र करो अल्लाह का बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि बाकी इबादत के लिए बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल है। किसी के लिए आपको मक्का जाना पड़ रहा है ताकि आप उमरा करें या हज करें, कुछ के लिए आपको कुछ खास गेटअप में आना पड़ता है, नमाज है तो उसके लिए आपको वजू करना पड़ता है। लेकिन जिक्र एक ऐसी इबादत है कि जिसके लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, वजू की भी जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं सर पे दुपट्टा रखेंगे तो नमाज पढ़ कुरान पढ़ेंगे, अजान की आवाज़ आई फौरन सर पे दुपट्टा रखो। सुना वह अपने लोगों को? शादी हॉल में मैंने एक मौके पे देखा, लोग सब अपने रंग में बैठे हुए थे जैसे अच्छा लगता था उनको। इतने में मौलवी साहब वहाँ आए, अमेरिका में इस तरह होता है कि शादी हॉल के अंदर ही खुतबा होता है निकाह का, और एक फंक्शन टाइप जैसे किसी भी स्पीकर को बुलाते हैं और छोटी सी वो स्पीच भी देते हैं। अब बहुत ही दिलचस्प बात ये हुई कि खवातीन बेचारी इतने पैसे लगा के दुपट्टे टकाए हुए थे, उन्होंने पिनअप किए हुए थे, ऑफकोर्स वो तो नहीं उठ सकते। जो ही मौलवी साहब ने खुतबा शुरू किया, नहमदहू व नस्तईनहू व नस्तगफिरू, अब जो ही हम अरबी सुनते हैं हमें लगता है कि ओहो बस ये तो अब दुपट्टा लेना पड़ेगा, तो वो फिर एक दूसरे दुपट्टा कोई नहीं कुछ नहीं। तो आखिर मैंने देखा कि जो टेबल्स के ऊपर आ गए, आप खुद ही समझ गए, यानी उन्होंने अपने नैपकिन उठा के रखे। यानी आप सोचिए कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इससे क्या होता है, ना ले कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं अजान हो रही हो तो दुपट्टा लेना लाजमी है, कोई मुझे पूछे तो मैं कभी कुछ कहते हैं। और बाज़ लोगों ने तो एक और जुल्म ढाया, कहते हैं बाथरूम में नंगे सर जाओ तो पता नहीं क्या होता है। मुझे किसने पूछा ये मसला, बहुत दफ़ा पूछा है कि हमारी बड़ी बुजुर्गों ने कहा है कि बाथरूम में जाओ तो सर ढांक के जाओ, तो मैंने कहती नहीं बाहर जाओ तो सर ढांक के जाओ। यानी अब देखिए कि खुद साख्ता एक दीन है ना, और कर रहे हैं तो काम। पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारी अजानें होती है ना, तो लोग इसी मुश्किल का शिकार होते हैं कि अब एक अजान खत्म हुई तो दूसरी, और वजह क्या कि दुपट्टा लेना पड़ेगा। तो जिक्र के लिए तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक इंसान अल्लाह का जिक्र कहीं भी कर सकता है। और फिर साथ ही फरमा दिया कि इस गौर व फिक्र का नतीजा क्या निकालते हैं कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, अल्लाह ये कायनात तूने बातिल पैदा नहीं की। ये है इस्लाम के साइंस पढ़ाने का तरीक़ाकार, कि लोगों को ये बताता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को ऐसे ही पैदा नहीं किया, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ पलट गई चीज़, और साथ ही फिर अपना फिक्र लग गया, सुबहानका पाक है तू, किस चीज़ से जो लोग तुझे कहते हैं, जो तेरे बारे में लोग अकायद घड़ते हैं, इससे तू पाक है। लिहाजा हमारी दरख्वास्त क्या है कि फ़कीना अज़ाबन्नार, ये अगली अलामत नोट कीजिएगा अक्लमंदों की, कि वो आग के अजाब से बचना चाहते हैं, कहते हैं अल्लाह तू हमें आग से बचा दे। ये है असल में अक्लमंद, जो इस गम का शिकार है कि मेरा अंजाम क्या होगा, मैं आग से बच जाऊं, फिर और अकल खुलती है। देखिए अकल की गुत्थियां भी इंशाल्लाह हम सुलझाएंगे बाद में, लेकिन अकल को सिर्फ सीधे रास्ते पे आप डाल देते हैं ना, उसके बाद देखिए अल्लाह खुद ही रास्ते दिखाता है। अगली दुआ जुबान पे आ जाती है, रब्बना इन्नका मन तुदखिल नार फकद अख्ज़ैतहू, ए हमारे रब बेशक जिसे तूने आग में दाखिल कर दिया बस तूने तो उसको रुसवा कर दिया, जलील ही कर दिया। यानी लोग तो दुनिया की रुसवाइयों को रुसवाई समझते थे, लोग तो दीनदार होने को रुसवाई समझते थे, असल रुसवा वो है जिसको आग में डाल दिया जाए। देखिए भरी महफिल में कोई थप्पड़ मार देना तो बंदे को दर्द भूल जाता है, ये गम लग जाता है कि लोगों ने तो नहीं देखा, ज़मीन फटे और उसमें गिरूं, क्या हाल होगा जब लोगों को जहन्नुम के अंदर धक्के दिए जाएंगे। इस रुसवाई से बचना चाहता है अक्लमंद शख्स, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। फिर अगली दुआ मचलती है अक्लमंद की जुबान पे, रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान, फिर वो पुकारते हैं कि हमारे रब बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले को जो पुकार रहा है ईमान की तरफ। क्या कहता है ये मुनादी? अन आमिनू बि रब्बिकुम, कि ईमान ले अपने रब पर, लिहाजा फामन्ना, बस हम ईमान ले आए। ए अल्लाह तेरे एक पुकारने वाले ने हमको पुकारा, ये कौन कह रहा है? अक्लमंद कह रहा है। कौन है यहाँ मुनादी? मुनादी का लफ्ज़ है पुकारने वाला, जैसे कॉलर के इंग्लिश का जो लफ्ज़ ना कॉलर, टू कॉल का मानी जो होता है, यहाँ मुनादी से तीन मुख्तलिफ मानी है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में तो मुनादी वो था जो खुद नबी सल्लम थे, और मुनादी कहते हैं ऊंची आवाज़ से पुकारने वाले को, निदा से, अजान को भी निदा कहते हैं अरबी जुबान में। तो मुनादी अपने दौर में नबी सल्लम थे, जब आप पे वही उतरी तो आपको हिसफा पे गए, फिर आपने बुलंद आवाज़ में लोगों को पुकारा کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایک معروف واقعہ جس کی یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں. اسی طرح حضرت نوح نے اپنی قوم کو پکارا انی دعوتکم, بے شک میں نے پکارا ان کو, انی دعوتہم جہارن, کبھی چھپا کے کبھی ظاہر کر کے پکارا. تو اپنے دور کا نبی منادی ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے درجے پہ منادی ہوتے ہیں نبیوں کے وارث یعنی عالم لوگ, علم والے, مبلغین. کچھ لوگ تو براہ راست نبیوں کی پکار سن کے ماننے لگ جاتے ہیں نا یا انکار کرتے ہیں, لیکن کچھ پھر نبیوں کے ورثاء علماء کی بات سنتے ہیں. اور تیسرا یہاں منادی کی جو تفسیر, تیسری تفسیر اس کی ہے قرآن, جو ہر دور کے لیے لوگوں کو پکار پکار کے بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف, ینادی للایمان. کیونکہ قرآن کی محفل میں بیٹھ کے جو ایمان تازہ ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا. میں نے تو اس کو حرم میں بھی نہیں محسوس کیا. میں خانہ کعبہ میں جب ہوتی ہوں کبھی اللہ موقع دے اور نفل طواف وہ سب کچھ, تو میں اس وقت اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ اللہ میرے دل کی حالت جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہوتی ہے کیا وہ اس سے بہتر ہوتی ہے جو یہاں اس حرم میں آ کے ہوئی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے میرے ایمان کا ضعف کہہ لے یا کچھ ہے. مجھے تو قرآن کی محفل میں لگتا ہے کہ ایمان زیادہ بڑھتا ہے, ایک یکسوئی ہوتی ہے, بہرحال ماحول کا اثر ہوتا ہے, وقت اور حالات کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ قرآن لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا آمنو بربکم, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, تم مجھے کسی خوبصورت جزدان میں نہ بھی لپیٹو, مجھے سونے چاندی سے مت لکھو, بڑی بڑی کیلی گرافک میں لگا کے گھروں میں مت سجاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, بس میری ایک ہی پکار ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ, میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کتاب بولتی ہے. عقل مند کیا کرتا ہے اس پکار کو سن کر؟ نو, ابھی موڈ نہیں, ابھی سیریس نہیں, ابھی حالات سازگار نہیں, ٹو مچ نہیں, ایک لفظ میں اللہ نے بتا دیا عقل مندی کا اظہار کیا ہے, فامنا, اللہ مان گئے. بس پکارنے والے نے پکارا, ہم آگے. جہنمی جہنم میں جب جائیں گے تو داروغہ جہنم ان سے کیا کہیں گے؟ سورۃ ملک میں پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, جب جہنمی اس جہنم میں پھینکے جائیں گے تو پوچھا جائے گا الم یاتیکم نذیر, کیا کوئی ڈرانے والا آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے بلا آئے تھے, مگر ہم نے جھٹلایا اور ہم نے نہ مانا. تو عقل مندی کی اگلی علامت کیا ہے؟ کہ قرآن کی اور پلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا جائے. اب آگے ایمان لے آئے, دیٹس اٹ, ختم. نہیں, جب جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے نا, جتنا ایمان بڑا ہوتا ہے اتنی غم لگ جاتا, اتنا بڑا غم لگ جاتا ہے اپنے گناہوں کا. کل تک کتاب سے دور تھے تو کہتے تھے کتنوں سے اچھے ہیں, لو دوسروں سے نہیں اچھے, تم نے ہمارے اندر خرابی کیا دیکھی ہے. لیکن اب آگے کتاب کی طرف, منادی کی پکار پہ آ گئے, ایمان آ گیا, تو ساتھ ہی زبان پہ دعا مچلتی ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, جو پچھلی زندگی میں ہوئے, جو ابھی بھی ہو رہے ہیں, کتاب کے تعلق کے ساتھ بھی پورا ابھی گناہوں سے بچ نہیں پا رہے, بڑے بڑے گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, ان کو ہمارے گناہوں کو چھپا دے, اغفر لنا, چھپا دے, کور کر دے, وکفرنا سیئاتنا, اور ہماری سیئات مسٹیکس ہم سے دور کر دے, ہماری بری بری عادتیں دور کر دیں, چھٹی نہیں رہی. کتنا لڑتے ہیں, کتنا جہاد بن نفس کرتے ہیں, چھٹتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز منہ کو لگ جاتی ہے وہ چھٹتی نہیں, اللہ تو میری ان مصیبتوں سے جان چھڑا, میری اخلاق کی برائیاں, میرے کردار کی, میری عبادات کی کمیاں تو دور کر دے. اور ایک اور دعا ہے اللہ, کہ آج تو منادی کی پکار پہ لبیک کہہ کر میں آ گئی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پلٹ جاؤں. لہذا وتوفنا مع الابرار, مجھے نیکوں کے ساتھ مارنا, یعنی مرتے دم تک کے ساتھ کو ختم نہ کرنا. یہ چند دنوں کا سودا نہ ہو, یہ چند مہینوں کا کھیل نہ ہو, یہ کسی کورس کی حد تک کی بات نہ ہو, بلکہ موت تک مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے گی تو یقیناً اس وقت انسان نیکی ہی کر رہا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کو جس حال پہ موت آتی ہے وہ اسی پہ اٹھایا جاتا ہے. اور بندہ زندگی بھر جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا, تو امید کی جاتی ہے کہ موت بھی انہی کے ساتھ آئے. ایک چیز میرے شوہر کو بہت بیدار کرتی ہے, آپ کو بھی, آپ سے شیئر کروں گی. اب تو بہت نرسہ و موقع ہی نہیں ملتا اخبار پڑھنے کا, خاص طور پہ پاکستانی اخبار, لیکن جب کبھی کافی فراغت ہوتی تھی تو اخبار بڑے شوق سے پڑھتے تھے سبھی, میں بھی پڑھتی تھی. तो कभी किसी का इंतकाल हो जाता था, कोई गुलुकारा, कोई अदाकारा, कोई आर्टिस्ट के नाम पे, फन के नाम पे, तो अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आती थी और साथ ही लिखा होता था कि फिल्म इंडस्ट्री के सैकड़ों लोगों ने उनके नमाज़े जनाजा में शिरकत की, फुलां और फुलां, दिस एंड दैट। इसी तरह कभी कभी कोई ऐसी खबर आ जाती थी, कोई अल्लाह वाला चला गया, कोई आलिम, कोई दीनदार। पहला फ़र्क तो ये होता था, वो खबर बड़ी छोटी होती थी, ढूंढनी पड़ती थी कि अच्छा कोई खबर आई है, और फिर उसके नीचे लिखा होता था कि शहर के मुमताज़ उलमा ने शिरकत की, और बास के तो बाहर से आते हैं, किसी के हरम के इमाम के आने की खबरें। वो चीज़ मेरे शऊर को आज भी बेदार करती है कि जो सारी जिंदगी जिन चीज़ों में जकड़ा रहा ना, जो उसका हल्का अहबाब था, तो उनकी मौत पे वही लोग आए। चले, हमें नहीं पता कौन अच्छा होता है कोई बुरा होता है, मैं कतन कोई जुमला नहीं बोल रही कि फलां फिल्मों में काम करने वाले बुरे हैं, हमें किसी का नहीं पता, ना हमें किसी का नाम पता है। लेकिन सोचिए, नमाज जनाजा क्या है? एक दरख्वास्त, ए अल्लाह इसको माफ़ कर दे। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किताबु सलात में, नमाज जनाजा का दूसरा नाम है दरख्वास्त। ए अल्लाह, ये हमारा दोस्त था, साथी था, भाई था, बहन था, हमारा ख्याल है कि अच्छा था, फिर भी गुनाह किए तो इसको माफ़ करे। अब जिसके नमाज जनाजा में जैसे लोग होंगे, उसकी दुआ वैसी कबूल होगी ना। वो शख्स जिसकी नमाज जनाजा वो लोग पढ़े जिनको खुद भी शायद नमाज आती है कि नहीं, तहारत के मसाइल उनको पता भी है कि नहीं, और एक वो शख्स जिसकी नमाज जनाजा वो पढ़ें कि जो खुद ईमान और तकवा में रंगे हुए हैं, जिनको अपनी मौत याद है, तो फ़र्क होगा ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी नमाज जनाजा में 40 का भी लफ्ज़ आता है, इससे कम बेश का भी आता है, मवाहिदीन यानी अल्लाह को हकीकत में एक मानने वालों ने शिरकत कर ली, अल्लाह फिर उस बंदे को बख्श देता है। क्योंकि अल्लाह को लाज आती है कि इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग इसकी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। तो लिहाजा तवफ्फना माल अबरार में दो बातें हैं कि जिंदगी भर आखिरी वक्त तक हमें नेकियों पे रखना, और दूसरी बात है कि हमारी मौत के वक्त हमारे लिए जो दुआएं करें वो अबरार हों। और अबरार कौन होते हैं? बिरस की जमा है, बार की जमा है, पीछे हम देख चुके इसको वैसे। और बहुत नेकियां करने वाला वो शख्स जिसका हर वक्त दिल चाहे कि मैं नेकी करता रहूं, उसको अबरार में से कहते हैं, और अल्लाह हमें उसी में शामिल कर ले। एक मखसूस नेकी नहीं, हर किस्म की नेकी करने वाला शख्स अबरार होता है। अगर आप गौर फरमाएंगे ना, तो इसका रूट वही है जो लईसल बिर्रा का था, और बिर आपको बताया था बर से है, और बर कहते हैं जंगल को, और जंगल को जंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें छोटी बड़ी लकड़ियां, छोटे पौधे, बड़े दरख्त भी होते हैं। तो बिर के अंदर ओवरऑल नेकियों का तस्वुर है, ये नहीं कि जो एंगल दीन का अच्छा लगा वही दीन बना दिया, पर्दे की बात हुई सारा दीन पर्दे को बना दिया, तबलीग की बात हुई सारा दीन तबलीग हो गया, जिहाद की बात है तो कद जिहाद ही दीन है, नहीं, ओवरऑल फुल स्नैरियो में दीन को देखो तो तवफ्फना माल अबरार में बैलेंस्ड किस्म के लोग हैं, जो दीन को सवार नहीं कर लेते, भूत नहीं सवार हो जाता उन पे दीन का, हवा नहीं बना लेते अपने दीन को, लोगों को मुश्किलों में नहीं डालते, बल्कि जहां जिस नेकी का मौका आता है वो करते हैं। और फिर उसके बाद एक और दुआ, रब्बना व आतीना मा व अत्तना अला रसुलिक, ए हमारे रब हमें दे दे वो चीज़ जिसका तूने हमारे रसूलों से वादा किया, वला तुखजीना यौमल क़ियामत इन्नक ला तुखलिफुल मियाद, और हमें क़ियामत के दिन रुसवा न करना, और बेशक तू वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यहाँ देखिए अब अक्लमंदों की एक और बात, रसूलों से किए हुए वादे की कबूलियत की दुआ करते हैं कि अल्लाह वादे पूरे कर। और रसूलों के ज़रिए क्या वादे हुए थे? जन्नत के वादे, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए अल्लाह ताला से बहुत सारी रहमत की चीज़ें हैं। अब रसूलों की तरफ बात करके फरमा दिया कि अल्लाह तो हमारे वादों को के ख़िलाफ़ ना करना। अगर आप इन सारी दुआओं का एक तायराना जायज़ा लेना, तो आयत 190 में ताल्लुक़ बिल्लाह की बात है, ईमान बिल्लाह की बात की मुत्तकी उलुल अलबाब ने। आयत 191 से 192 को देखें तो इसमें ईमान बिल आखिर है, आखरत पर ईमान, और आयत 193 से 194 को देखेंगे तो ईमान बिर रिसाला है, और अगली आयत फिर 195 में हम देखेंगे कि ईमान का अमल और किरदार पर क्या असर पड़ता है। यहाँ तक अब तिलावत सुनते हैं, और फिर इंशाल्लाह इन आयतों की कुछ मज़ीद बातों की वजाहत भी होगी।
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد